ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। रजस्वला विभेद का अंत संबंधी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से हुआ पारित। संकल्प प्रस्ताव क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सभाध्यक्ष दाहाल ने सरकार को दिया निर्देश। स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को सरकार हमेशा प्रोत्साहित करेगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और पास के बिजली सब स्टेशन में आग लगने के कारण लंदन का हिथ्रो विमानस्थल हुआ बंद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने मर्यादित रजस्वला के लिए रजस्वला विभेद का अंत संबंधी संकल्प प्रस्ताव को पारित किया है। बैठक में राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने मर्यादित रजस्वला के लिए रजस्वला विभेद का अंत संबंधी संकल्प प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का सरकार को निर्देश किया। बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सांसद मदन कुमारी शाह गरिमा ने कहा कि रजस्वला विभेद का अंत करने के लिए आवश्यकता अनुसार कानून में परिमार्जन के लिए संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्षिक बजट में भी मर्यादित महीनावारी यानी रजस्वला शीर्षक रखने की बात पर जोर दिया। आज शाम 5 बजे के लिए निर्धारित राष्ट्रीय सभा की दूसरी बैठक सूचना प्रकाशित कर स्थगित हो गई। संघीय संसद सचिवालय के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे ने बताया कि विशेष कारणवश निर्धारित बैठक न हो सकने के बाद अगली बैठक रविवार दोपहर 12:15 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि राष्ट्रीय उत्पादन और प्रयोग पर बल देते हुए देश को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाना होगा। आज नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ के तीसरे महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को सरकार हमेशा प्रोत्साहित करती रहेगी। उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए कानून और कर प्रणाली में किस तरह के सुधारों की जरूरत है, इसके लिए सुझाव देने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सुझाव के क्रियान्वयन पर सरकार पूरा ध्यान देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योगी व्यवसायियों को असंतुष्टि जताकर बैठे रहने की बजाय और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग ने अनुमति प्राप्त न करने वाली श्रमिक आपूर्तिकर्ता कंपनियों से श्रमिक आपूर्ति न करवाने की सूचना सभी प्रतिष्ठानों के नाम जारी की है। विभाग ने कहा है कि सरकारी निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं की हुई कंपनियों से श्रमिक आपूर्ति किए जाने की शिकायतें आई हैं, इसलिए प्रतिष्ठानों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय अंतर्गत के इस विभाग ने आज काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर श्रम आयन के विपरीत कोई भी काम न करने और न करवाने का आग्रह किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
बाकी समाचार। जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिवालय और राष्ट्रीय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ के आयोजन में कल से प्रथम राष्ट्रीय पानी सम्मेलन शुरू हो रहा है। जल संबद्ध संघ संस्थाओं के सहकार्य में चैत 9 और 10 गते पहली बार राष्ट्रीय पानी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये बात आज काठमांडू में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के बिना आर्थिक समृद्धि और विकास संभव नहीं है। जनता के साथ माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान अंतर्गत आज वीरगंज में आयोजित एक वृहत अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के लिए अपनाई जाने वाली विधि और पद्धति में त्रुटि के कारण वर्तमान में समस्याएं देखी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लंबे संघर्ष के बाद आए संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का संस्थागत विकास न होने के कारण जनता में निराशा छाई हुई है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने अपनी इस बार की भारत यात्रा को कूटनीतिक संबंध विस्तार की दृष्टि से फलदायी बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा राजधानी नई दिल्ली में 17 से 20 मार्च तक आयोजित रायसीना डायलॉग में भाग लेने के बाद आज स्वदेश लौटने पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। परराष्ट्र मंत्री डॉ देवा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने पर चर्चा हुई। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के आयोजन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला ने कहा है कि पार्टी का 15वां महाधिवेशन 2082 मार्गशीर्ष के अंत तक आयोजित हो जाना चाहिए। नेपाली कांग्रेस मोरंग काठमांडू संपर्क समिति द्वारा आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में देश की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और नेपाली कांग्रेस की भूमिका विषय पर बोलते हुए नेता डॉ कोइराला ने कहा कि यदि महाधिवेशन 2082 मार्गशीर्ष मास के अंत तक नहीं होता तो पार्टी कमजोर होती जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों और नेतृत्व के प्रति जनता की निराशा बढ़ रही है, इसलिए जनता की इस निराशा को दूर करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जनता के विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन की राजधानी लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट शुक्रवार को पूरे दिन बंद रहेगा क्योंकि इसके पास स्थित एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में बड़े पैमाने पर आग लग गई है जो एयरपोर्ट को बिजली देता है। एयरपोर्ट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि आग के कारण एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बयान में आगे कहा गया कि यात्रियों और सहकर्मियों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हीथ्रो 21 मार्च रात 12 बजे तक बंद रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई एयरपोर्ट पर न जाएं और ज्यादा जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। असुविधा के लिए खेद है। बता दें कि हीथ्रो ब्रिटेन का सबसे बड़ा विमानस्थल है जहां हर रोज लगभग 1300 विमान उतरते और उड़ते हैं। सूडानी सेना ने राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति भवन को अर्धसैनिक बल यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स से वापस ले लिया है। सैन्य नेताओं ने इसकी पुष्टि की है। बीबीसी की ओर से पुष्टि की गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो और तस्वीरों में सैनिक खुशी से अपनी बंदूकों को लहराते हुए, नारे लगाते हुए और प्रार्थना करते हुए देखे जा सकते हैं। 2 साल पहले रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सूडान की सेना को राजधानी खार्तूम से बाहर कर दिया गया था। आरएसएफ ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सेना के प्रवक्ता नबील अब्दुल्ला ने सरकारी टेलीविजन पर कहा है कि सैन्य बलों ने राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय खार्तूम में मंत्रालयों की इमारतों पर कब्जा कर लिया है। नबील अब्दुल्ला ने आगे कहा, सेनाओं ने पूरी तरह से दुश्मन के लड़ाकों और उपकरणों को नष्ट कर दिया और बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण जब्त किए गए हैं। बता दें कि खार्तूम वो जगह है जहां 2 साल पहले सूडान का गृह युद्ध शुरू हुआ था और जहां कुछ सबसे बड़े युद्ध लड़े गए थे। युद्ध की शुरुआत में आरएसएफ ने राजधानी खार्तूम और सूडान के पश्चिमी हिस्से पर नियंत्रण बना रखा था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। इसमें सेना और आरएसएफ दोनों पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का पूर्वानुमान लगाने में विफलता के लिए देश की सुरक्षा सेवा के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है। इसराइली कैबिनेट ने गुरुवार की शाम को बैठक कर रोनेन बार की रिटायरमेंट से पहले बर्खास्तगी को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। रोनेन बार को अक्टूबर 2021 में शिन बेट के प्रमुख के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। बीते रविवार को नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में रोनेन बार को बर्खास्त करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। उन्होंने दोनों के बीच चल रहे अविश्वास का हवाला दिया और कहा वो समय के साथ बढ़ा है। नेतन्याहू के इस कदम के बाद इसराइल में लोगों के बीच आक्रोश भड़क उठा और जिससे यरूशलम में सरकार विरोधी प्रदर्शन और भड़क गए हैं। इसके कारण हजारों इसराइली गजा पर इसराइल के नए हमले का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.9 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रजस्वला विभेद का अंत संबंधी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से हुआ पारित। संकल्प प्रस्ताव क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष दाहाल ने सरकार को किया निर्देश। स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को सरकार हमेशा प्रोत्साहित करेगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और पास के बिजली सब स्टेशन में आग लगने के कारण लंदन का हिथ्रो विमानस्थल हुआ बंद। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।